यूहन्ना रचे सुसमाचार। यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार। यूहन्ना अध्याय एक। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की रोशनी थी। रोशनी अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह स्वयं तो रोशनी ना था, परंतु उस रोशनी की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची रोशनी, जो हर एक इंसान को रोशनीमय करती है, दुनिया में आने वाली थी। यीशु जगत में थे, और जगत उनके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उन्हें नहीं पहचाना। वह अपने घर आए, और उनके अपनों ने उन्हें नहीं अपनाया, परंतु जितनों ने उन्हें अपनाया, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन लोगों को जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। वह ना तो खून से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और वचन ने देह धारण की, और कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में आकर रहा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उनके बारे में गवाही दी और पुकार कर कहा,
ये वही है जो मेरे बाद आ रहे हैं, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले थे।
क्योंकि उनकी परिपूर्णता से हम सब ने हासिल किया, अर्थात अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। नियम शास्त्र मूसा के द्वारा दिया गया, परंतु कृपा और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, केवल इकलौते पुत्र ने, जो पिता की गोद में है, परमेश्वर को प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से पुरोहितों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा कि वह कौन है, तो उसने यह मान लिया कि वह मसीह नहीं है। तब उन्होंने उससे पूछा,
तो फिर तुम कौन हो? क्या तुम एलिया हो?
उसने उत्तर दिया,
नहीं।
तो क्या तुम कोई भविष्यवक्ता हो?
उसने उत्तर दिया,
नहीं।
तब उन्होंने उससे फिर पूछा,
तो तुम हो कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें? तुम अपने विषय में क्या कहते हो?
उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है,
मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ, प्रभु का मार्ग तैयार करो।
यह सवाल पूछने वाले लोग फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। आखिर में उन लोगों ने उससे पूछा,
यदि तुम ना मसीह हो, और ना एलिया, और ना कोई भविष्यवक्ता, तो फिर बपतिस्मा क्यों देते हो?
यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया,
मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति है जिन्हें तुम नहीं जानते, जिनकी सेवकाई आरंभ होने वाली है, वह मुझसे श्रेष्ठ हैं, उनकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं।
यह बातें यर्दन के पार बेतेनिया में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा,
देखो, यही परमेश्वर के मेमने हैं, जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाते हैं। ये वही हैं, जिनके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे बाद आएंगे, जो मुझसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे मुझसे पहले थे। मैं तो उन्हें पहचानता ना था, मैं इसलिए पानी से बपतिस्मा देता आया हूँ, ताकि वे इसराइल पर प्रकट हो जाएं।
यूहन्ना ने यह गवाही दी,
मैंने आत्मा को फाकते के समान आसमान से उतरते देखा था, और वे उन पर ठहर गया था। मैं तो उन्हें पहचानता नहीं था, लेकिन जिन्होंने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा था, उन्हीं ने मुझसे कहा था कि जिस पर तुम आत्मा को उतरते और ठहरते देखो, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाले हैं। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर के बेटे हैं।
दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शिष्यों में से दो जन वहां खड़े थे। तब यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा,
देखो, ये परमेश्वर के मेमने हैं।
वे दोनों शिष्य यूहन्ना की यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने उनको अपने पीछे आते हुए देखा और उनसे कहा,
तुम किसकी खोज में हो?
उन्होंने यीशु से कहा,
गुरुजी, आप कहाँ रहते हैं?
यीशु ने उनसे कहा,
चलकर देख लो।
तब उन लोगों ने आकर उनके रहने की जगह देखी और वे उस दिन उन्हीं के साथ रहे। उस समय शाम के तकरीबन 4 बजे थे। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के साथ चल पड़े थे, एक शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर कहा कि हमको मसीह मिल गए हैं। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उसे देखकर कहा,
तुम तो यूहन्ना के पुत्र शमौन हो, तुम अब से काइफा अर्थात पतरस कहलाओगे।
दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। उन्होंने फिलिप्पुस से मिलकर कहा,
मेरे पीछे आओ।
फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नेतनियल से मिलकर उससे कहा,
जिनका वर्णन मूसा ने नियम शास्त्र में और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में किया है, वो हमको मिल गए। वो यूसुफ के पुत्र यीशु नासरी हैं।
नेतनियल ने उससे कहा,
क्या कोई भी अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है?
फिलिप्पुस ने उत्तर दिया,
चलकर देख लो।
यीशु ने नेतनियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा,
देखो, ये सचमुच इसराइली है, इसमें कपट नहीं।
नेतनियल ने उनसे कहा,
आप मुझे कहां से जानते हैं?
यीशु ने उसको उत्तर दिया,
इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुम्हें बुलाया, जब तुम अंजीर के पेड़ के नीचे थे, तब मैंने तुम्हें देखा था।
नेतनियल ने उन्हें उत्तर दिया,
हे गुरु, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप इसराइल के महाराजा हैं।
यीशु ने उसको जवाब दिया,
मैंने जो तुमसे कहा कि मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो? तुम इससे बड़े बड़े काम देखोगे।
यीशु ने यह भी कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को उतरते चढ़ते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे।
यूहन्ना अध्याय 2। फिर तीसरे दिन गलील के काना नामक गांव में किसी की शादी थी और यीशु की मां भी वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में बुलाए गए थे। जब अंगूर का रस खत्म हो गया तो यीशु की माता ने यीशु से कहा,
उनके पास अंगूर का रस नहीं है।
यीशु ने उससे कहा,
हे महिला, मुझे तुमसे क्या लेना देना, अभी मेरा समय नहीं आया है।
यीशु की मां ने सेवकों से कहा,
जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना।
वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रिवाज के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा,
मटकों में पानी भर दो।
तब उन्होंने उन मटकों को मुंह भर दिया। तब यीशु ने उनसे कहा,
अब निकालकर दावत के प्रधान के पास ले जाओ।
वह ले गए। जब दावत के प्रधान ने वह पानी चखा जो अंगूर का रस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, तो उसने दुल्हे को बुलाकर उससे कहा,
हर एक आदमी पहले अच्छा अंगूर का रस देता है, जब लोग पीकर तृप्त हो जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तुमने अच्छा अंगूर का रस अब तक रख छोड़ा है।
यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा दिखा दी और उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। इसके बाद वह उनकी माँ तथा उनके भाई और उनके शिष्य कफरनहूम को गए और वे वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों के फसा का त्यौहार नजदीक था और यीशु यरूशलेम को गए। तब उन्होंने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया। उन्होंने सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। उन्होंने कबूतर बेचने वालों से कहा,
इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ।
तब उनके शिष्यों को याद आया कि लिखा है,
आपके घर की धुन मुझे खा जाएगी।
इस पर यहूदियों ने उनसे कहा,
आप ऐसा करने के द्वारा हमें कौन सा चिन्ह दिखाते हैं?
यीशु ने उनको उत्तर दिया,
इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा।
यहूदियों ने कहा,
इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे, क्या आप उसे केवल 3 दिन में खड़ा कर देंगे?
लेकिन यीशु ने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था, इसलिए जब वे मरे हुओं में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि यीशु ने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र वचन और उस शब्द पर जो यीशु ने कहा था विश्वास किया। जब वे यरूशलेम में फसह के समय त्योहार में थे तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वे दिखाते थे देखकर उनके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने उन पर भरोसा नहीं किया क्योंकि वह सबको जानते थे और उन्हें जरूरी ना था कि इंसान के बारे में कोई गवाही दे, क्योंकि वह खुद ही जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है। यूहन्ना अध्याय 3। फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक आदमी था, वह यहूदियों का धार्मिक अगुवा था। उसने रात के समय यीशु के पास आकर कहा,
हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की तरफ से गुरु होकर आए हैं, क्योंकि जिन चिन्हों को आप दिखाते हैं उन्हें यदि परमेश्वर साथ ना हो तो कोई नहीं दिखा सकता।
यीशु ने उसको उत्तर दिया,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर कोई नए तरीके से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता है।
निकोदेमुस ने यीशु से पूछा,
इंसान बूढ़ा हो जाने पर कैसे फिर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार जाकर जन्म ले सकता है?
यीशु ने उत्तर दिया,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई व्यक्ति पानी और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि जो देह से जन्मा है वो देह है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना करो कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें नए तरीके से जन्म लेना जरूरी है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तुम उसकी आवाज सुनते हो लेकिन नहीं जानते कि वो कहां से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है।
निकोदेमुस ने उनको उत्तर दिया,
ये बातें कैसे हो सकती हैं?
यह सुनकर यीशु ने उससे कहा,
तुम यहूदियों के गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझते? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, जिसे हमने देखा है हम उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही स्वीकार नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम भरोसा नहीं करते, सो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे भरोसा करोगे? कोई और स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरीके से जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि दुनिया उनके द्वारा मुक्ति पाए। जो उन पर विश्वास करता है उस पर सजा की आज्ञा नहीं होती, लेकिन जो उन पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सजा की आज्ञा का कारण ये है कि रोशनी जगत में आई और मनुष्यों ने अंधेरे को रोशनी से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो रोशनी से दुश्मनी रखता है और रोशनी के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो रोशनी के पास आता है, ताकि उसके काम दिख जाएं
कि वे परमेश्वर की तरफ से किए गए हैं।
इसके बाद यीशु और उनके शिष्य यहूदिया देश में आए और यीशु वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगे। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर वहीं बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक कैदखाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के शिष्यों का किसी यहूदी व्यक्ति के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। लोगों ने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा,
हे गुरु, जो व्यक्ति यर्दन के पार आपके साथ थे और जिनकी आपने गवाही दी है, वो भी बपतिस्मा देते हैं और सब उन्हीं के पास जाते हैं।
यूहन्ना ने उत्तर दिया,
जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। तुम तो खुद ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा कि मैं मसीह नहीं, परंतु उनके पहले भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, दूल्हे का दोस्त तो खड़ा हुआ दूल्हे की सुनता है और दूल्हे के शब्द से बहुत खुश होता है। अब मेरी यह खुशी पूरी हुई है। यह जरूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूं। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, वह पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ यीशु ने देखा और सुना है वे उसी की गवाही देते हैं, और कोई उनकी गवाही स्वीकार नहीं करता। जिसने उनकी गवाही स्वीकार कर ली, उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चे हैं, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वे आत्मा नाप नाप कर नहीं देते। पिता पुत्र से प्रेम रखते हैं और उन्होंने सब कुछ उसके हाथ में दे दिया है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर का गुस्सा उस पर रहता है।
यूहन्ना अध्याय 4। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक शिष्य बनाते और उन्हें बपतिस्मा देते हैं, हालांकि यीशु खुद नहीं लेकिन उनके शिष्य बपतिस्मा देते थे, तब यीशु यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चले गए और उनको सामरिया से होकर जाना जरूरी था। इसलिए वे सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आए, जो उस जगह के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब का कुआं भी वहीं था, इसलिए यीशु मार्ग के थके हुए उस कुएं पर जाकर बैठ गए। यह दोपहर का समय था। उसी समय एक सामरी स्त्री वहां पानी भरने के लिए आई। यीशु ने उससे कहा,
मुझे पानी पिलाओ।
उनके शिष्य उस समय नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उनसे कहा,
आप यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगते हैं?
क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया,
यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है कि मुझे पानी पिलाओ, तो तुम उससे मांगती और वो तुम्हें जीवन का जल देता।
स्त्री ने उनसे कहा,
हे प्रभु, आपके पास पानी भरने के लिए तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, फिर वह जीवन का पानी आपके पास कहां से आया? क्या आप हमारे पिता याकूब से बड़े हैं जिसने हमें यह कुआं दिया? उसने खुद भी अपनी संतान और अपने जानवरों समेत उसमें से पिया था।
यीशु ने उसको उत्तर दिया,
जो कोई ये पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, लेकिन जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा।
स्त्री ने उनसे कहा,
हे प्रभु, वह पानी मुझे दीजिए ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना मुझे पानी भरने के लिए इतनी दूर आना पड़े।
यीशु ने उससे कहा,
जाओ अपने पति को यहाँ बुला लाओ।
स्त्री ने उत्तर दिया,
मेरा कोई पति नहीं है।
यीशु ने उससे कहा,
तुम ठीक कहती हो कि मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तुम 5 पति कर चुकी हो और जिसके पास तुम अब हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है, ये तुमने सच कहा।
स्त्री ने उनसे कहा,
प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि आप भविष्यवक्ता हैं। हमारे बुजुर्गों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और आप यहूदी लोग कहते हैं कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलम में है।
यीशु ने उससे कहा,
महिला मेरी बात का भरोसा करो कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि मुक्ति यहूदियों में से है। लेकिन ऐसा वक्त आ रहा है, लेकिन अब भी है, जब सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढते हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें।
स्त्री ने उनसे कहा,
मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाते हैं आने वाले हैं। जब वह आएंगे तो हमें सब बातें बताएंगे।
यीशु ने उससे कहा,
मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ वही हूँ।
इतने में उनके शिष्य आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहे हैं, तो भी किसी ने ना कहा, आप क्या चाहते हैं या क्यों उससे बातें कर रहे हैं। उसके बाद स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी,
आओ एक आदमी को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है।
तब वह नगर से निकलकर यीशु के पास आने लगे। इतने में उनके शिष्य यीशु से विनती करने लगे, गुरुजी कुछ खा लीजिए। लेकिन यीशु ने उत्तर दिया,
मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसके बारे में तुम नहीं जानते।
तब शिष्यों ने आपस में कहा,
क्या उनके लिए कुछ खाने के लिए लाया है।
यीशु ने उनसे कहा,
मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उनका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर डालो, वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद मनाएं। क्योंकि यहां ये कहावत उचित ही है कि बोने वाला एक है और काटने वाला कोई दूसरा। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने मेहनत नहीं की, लेकिन दूसरों ने की और तुम उनकी मेहनत के फल में भागी हुए।
उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से विश्वास किया। उस स्त्री ने ये गवाही दी थी कि यीशु ने वह सब कुछ जो उसने किया था उसे बता दिया। जब ये सामरी यीशु के पास आए तो उनसे विनती करने लगे, हमारे यहां रहिए। इसीलिए वह वहां 2 दिन तक रहे। उनकी शिक्षा के कारण और भी कई लोगों ने विश्वास किया। उन्होंने उस स्त्री से कहा,
अब हम तुम्हारे कहने से ही विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने खुद ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत के मुक्तिदाता हैं।
उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गए। यीशु ने खुद ही यह गवाही दी थी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वे गलील में आए तो गलीली आनंद के साथ उनसे मिले, क्योंकि जितने काम उन्होंने यरूशलेम में त्योहार के समय किए थे उन सबको उन्होंने देखा था, क्योंकि वह भी त्योहार में गए थे। तब वे फिर गलील के काना में आए जहां उन्होंने पानी को अंगूर का रस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका बेटा कफरनहूम में बीमार था। यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गए हैं, वह उनके पास गया और उनसे विनती करने लगा,
चलकर मेरे बेटे को अच्छा कर दीजिए, वो लड़का मरने पर है।
यीशु ने उससे कहा,
जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कभी भी विश्वास ना करोगे।
राजा के कर्मचारी ने उनसे कहा,
हे प्रभु मेरे बेटे की मौत होने से पहले चलिए।
यीशु ने उससे कहा,
जाओ तुम्हारा बेटा जिंदा है।
उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात को मान लिया और चला गया। वह वापस जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तुम्हारा लड़का जिंदा है। उसने उनसे पूछा,
किस समय से उसकी तबीयत ठीक होने लगी थी?
उन्होंने उससे कहा,
कल दोपहर लगभग 1 बजे उसका बुखार उतर गया।
तब वह पिता जान गया कि वह उसी समय हुआ जिस समय यीशु ने उससे कहा था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। तब उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यूहन्ना अध्याय 5। इन बातों के बाद यहूदियों का एक त्यौहार हुआ जिसमें यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह ठीक हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहां एक आदमी था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस हालत में पड़ा है, उससे पूछा,
क्या तुम ठीक होना चाहते हो?
उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया,
हे प्रभु, मेरे पास कोई मददगार नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है।
यीशु ने उससे कहा,
उठो, अपनी खाट उठाकर चलो।
वह मनुष्य तुरंत अच्छा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो ठीक हो गया था कहने लगे,
आज तो सब्त का दिन है, तुम्हें आज खाट उठानी जायज नहीं।
उसने उन्हें जवाब दिया,
जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा कि अपनी खाट उठाकर चलो।
उन्होंने उससे पूछा,
वो कौन आदमी है जिसने तुमसे कहा कि खाट उठाकर चलो?
जो अच्छा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गए थे। इन बातों के बाद वे आदमी यीशु को मंदिर में मिला। तब उन्होंने उससे कहा,
देखो तुम तो ठीक हो गए हो, फिर से गुनाह मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी मुसीबत तुम पर आ पड़े।
तब उस आदमी ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे अच्छा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सबत के दिन करते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा,
मेरे पिता अब तक काम करते हैं और मैं भी काम करता हूं।
इस कारण यहूदी और भी अधिक उन्हें मार डालने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ते लेकिन परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के समान ठहराते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को पिता करते हैं उन्हें पुत्र भी उसी तरह से करता है, क्योंकि पिताजी बेटे से प्रेम रखते हैं और जो जो काम वो खुद करते हैं वो सब बेटे को दिखाते हैं। वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएंगे ताकि तुम अचंभा करो, क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाते और जिलाते हैं वैसे ही बेटा भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का इंसाफ भी नहीं करते, परंतु इंसाफ करने का सब काम पिता ने पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो बेटे का आदर नहीं करता वो पिता का जिन्होंने बेटे को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरी शिक्षा सुनकर मेरे भेजने वाले परमेश्वर पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता परंतु वो मौत के पार होकर जीवन में दाखिल हो चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो समय आता है और अब है, जिसमें मुर्दे परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस तरह से पिता अपने आप में जीवन रखते हैं, उसी तरह से उन्होंने बेटे को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उन्हें इंसाफ करने का भी अधिकार दिया गया है, इसलिए कि वो ही मनुष्य का पुत्र भी है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, पुत्र का शब्द सुनकर जी उठेंगे। जिन्होंने बलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा मैं सुनता हूं वैसा ही न्याय करता हूं। मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं स्वयं ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, परमेश्वर है जो मेरी गवाही देते हैं, और मैं जानता हूं कि उनकी हर गवाही सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछा और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने बारे में इंसान की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें मुक्ति मिले। यूहन्ना तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी रोशनी में मगन होना अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे काम इस बात के गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता जिन्होंने मुझे भेजा है उन्होंने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उनका शब्द सुना और ना उनका रूप देखा है। तुम उनकी बातों को मन में बनाकर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उन्होंने भेजा है उस पर विश्वास नहीं करते हो। तुम बाइबल में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। ये वे बातें हैं जो मेरी गवाही देते हैं, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्यार नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, लेकिन तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? तुम तो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, लेकिन वो इज्जत जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि अगर तुम मूसा पर भरोसा करते तो मेरा भी भरोसा करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर भरोसा नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे भरोसा करोगे?
यूहन्ना अध्याय 6। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पास गए। तब एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चल पड़ी, क्योंकि जो अजीब काम वह बीमारों पर दिखाते थे वह उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने शिष्यों के साथ वहां बैठ गए। यहूदियों के फसा का त्यौहार निकट था। फिर यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा कि हम इनको खाने के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? लेकिन उन्होंने ये बात फिलिपुस को परखने के लिए कही, क्योंकि वह खुद जानते थे कि वह क्या करेंगे। फिलिपुस ने उनको उत्तर दिया,
200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए।
उनके शिष्यों में से शिमोन पत्रस के भाई अंद्रियास ने उनसे कहा,
यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए उससे क्या होगा?
यीशु ने कहा,
लोगों को बैठा दो।
वहाँ बहुत घास थी, तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5,000 पुरुष थे बैठ गए। फिर यीशु ने रोटियाँ ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और उसी तरह मछलियों में से जितनी वे चाहते थे। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
बचे हुए टुकड़े बटोर लो ताकि कुछ फेंका ना जाए।
उन्होंने उन्हें बटोरा और जो कि 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने के बाद बच गए थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्यक्रम उन्होंने कर दिखाया उसे देखकर लोग कहने लगे कि वह भविष्यवक्ता जो दुनिया में आने वाले थे निश्चय यही हैं। यीशु यह जानकर कि वह मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं फिर पहाड़ पर अकेले चले गए। शाम के वक्त उनके शिष्य झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के उस पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और ऐसा हुआ कि यीशु अभी तक उनके पास नहीं आए थे। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। लेकिन यीशु ने उनसे कहा,
मैं हूँ, डरो मत।
तब वे उन्हें नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वे नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जाना चाहते थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव नहीं है। यीशु अपने शिष्यों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़े थे लेकिन केवल उनके शिष्य चले गए थे। फिर भी और छोटी नावें तिबरियास से उस जगह के निकट आईं जहां उन्होंने प्रभु का धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहां ना यीशु हैं और ना उनके शिष्य तो वह भी छोटी छोटी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे। झील के पार आकर उन्होंने यीशु से मिलकर कहा,
हे गुरु, आप यहां कब आए?
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभे के काम देखे हैं, लेकिन इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। नाश होने वाले खाने के लिए मेहनत ना करो लेकिन उस खाने के लिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है। ये खाना मैं तुम्हें दूंगा, उसके लिए मेहनत करो क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है।
उन लोगों ने यीशु से कहा,
परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें?
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
परमेश्वर का काम ये है कि तुम उस पर जिसे उन्होंने भेजा है विश्वास करो।
तब उन्होंने उनसे कहा,
फिर आप कौन सा चिन्ह दिखाते हैं कि हम उसे देखकर आप पर विश्वास करें? आप कौन सा काम दिखाते हैं? हमारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी।
यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी लेकिन मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर लोगों को जीवन देती है।
तब उन्होंने यीशु से कहा,
प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया करें।
यीशु ने उनसे कहा,
जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देते हैं वो सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन अपने भेजने वाले परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं लेकिन उसे आखिरी दिन फिर जला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो हमेशा का जीवन पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिला उठाऊंगा।
तब यहूदी यीशु पर कुड़कुड़ाने लगे इसलिए कि उन्होंने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वे मैं हूं। उन लोगों ने कहा,
क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वे कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं?
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिन्होंने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं दुनिया के जीवन के लिए दूंगा वो मेरी देह है।
इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य कैसे हमें अपनी देह खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र की देह में से ना खाओ और उसका खून ना पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं। जो मेरी देह में से खाता और मेरा खून पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की चीज है और मेरा खून वास्तव में पीने की चीज है। जो मेरी देह में से खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वो भी जो मुझे खाएगा अपना मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो यही है, पुरखाओं के समान नहीं खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो हमेशा जीवित रहेगा।
ये बातें यीशु ने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही, इसलिए उनके शिष्यों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा,
ये बात कड़वी सच्चाई है, इसे कौन अपना सकता है।
यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे शिष्य आपस में इस बात पर कुड़कुड़ा रहे हैं, उनसे पूछा,
क्या यह बात तुम्हें असहनीय लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, देह से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते?
क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानते थे कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन उन्हें पकड़वाएगा। उन्होंने कहा,
इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता।
इस पर उनके शिष्यों में से बहुत से वापस चले गए और उसके बाद उनके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन बारहों से कहा,
क्या तुम भी चले जाना चाहते हो?
शिमोन पत्रस ने उन्हें उत्तर दिया,
प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर के पवित्र जन आप ही हैं।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है।
यह उन्होंने शिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन बारों में से था उन्हें पकड़वाने पर तुला हुआ था। यूहन्ना अध्याय 7। इन बातों के बाद यीशु गलील में सेवकाई करते रहे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वे यहूदिया में दिखाई नहीं देना चाहते थे। उन दिनों यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था, इसलिए उनके भाइयों ने उनसे कहा,
यहाँ से यहूदी को चले जाइए ताकि जो काम आप करते हैं उन्हें आपके शिष्य भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो मशहूर होना चाहे और छिप कर काम करे। अगर आप ये सब कर ही रहे हैं तो अपने कामों को खुले आम कीजिए।
यीशु के भाई भी उन पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा,
मेरा समय अभी तक नहीं आया है, परंतु सारा समय तुम्हारा ही है। संसार तुमसे दुश्मनी नहीं कर सकता, लेकिन वो मुझसे करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी नहीं आऊंगा, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ है।
वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गए। लेकिन जब उनके भाई पर्व में चले गए, तो वहां वे खुलेआम नहीं लेकिन दूसरे लोगों की तरह गए। वहां यहूदी यीशु को ये कहकर ढूंढने लगे कि वह कहाँ है। लोगों में उनके विषय में बहुत सी बातें होती रही थीं। कितने कहते थे
वे भला मनुष्य है,
और कितने कहते थे कि
नहीं, वे लोगों को भरमाता है।
तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उनके विषय में प्रकट रूप में नहीं बोलता था। जब पर्व के आधे दिन बीत गए, तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगे। तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा,
यीशु को बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई?
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
मेरा उपदेश मेरा नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उनकी इच्छा पर चलना चाहे, तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की तरफ से है या मेरी तरफ से। जो अपनी ओर से कुछ कहता है, वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है, वही सच्चा है और उसमें झूठ नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें नियम शास्त्र नहीं दिया? तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो?
लोगों ने उत्तर दिया,
तुम में दुष्ट आत्मा है, कौन तुमको मार डालना चाहता है?
यीशु ने उनको उत्तर दिया,
मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों से चली आई है। तुम सब्बत के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्बत के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है, ताकि मूसा के नियम शास्त्र की आज्ञा टल ना जाए, तो तुम मुझ पर क्यों गुस्सा करते हो कि मैंने सब्बत के दिन एक इंसान को पूरी तरह से ठीक किया? मुंह देखा न्याय ना करो, लेकिन ईमानदारी से इंसाफ करो।
तब कितने यरूशलेमी कहने लगे,
क्या यह वह नहीं जिन्हें मार डालने की कोशिश की जा रही है? लेकिन देखो, वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करते हैं और कोई उनसे कुछ नहीं कहता। क्या यह संभव है कि अधिकारियों ने सच सच जान लिया है कि यही मसीह है?
इनको हम जानते हैं कि किस खानदान से हैं, परंतु मसीह जब आएंगे तो कोई ना जानेगा कि वे कहाँ के हैं।
तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार कर कहा,
तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरे भेजने वाले पिता सच्चे हैं, उनको तुम नहीं जानते। मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि मैं उनकी ओर से हूँ और उन्होंने ही मुझे भेजा है।
यह सुनकर उन्होंने यीशु को पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उन पर हाथ ना डाला, क्योंकि उनका समय अब तक ना आया था। भीड़ में से कई लोगों ने उन पर विश्वास किया और कहने लगे कि मसीह जब आएंगे तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएंगे जो उन्होंने दिखाए? फरीसियों ने लोगों को उनके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना, और महायाजकों और फरीसियों ने उनके पकड़ने के लिए सिपाही भेजे। ये देखकर यीशु ने कहा,
मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते।
यहूदियों ने आपस में कहा,
वो कहां जाएंगे कि हम इन्हें ढूंढ ना पाएंगे? क्या वो उनके पास जाएंगे जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देंगे? उनके ये कहने का क्या मतलब है कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते?
फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा,
यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जैसा बाइबल में आया है उसके अनुसार जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी।
यीशु ने यह शब्द उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उन पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। आत्मा अब तक ना उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में ना पहुंचे थे। तब भीड़ में से कुछ लोगों ने ये बातें सुनकर कहा,
सचमुच यही वे भविष्यवक्ता है।
दूसरों ने कहा,
यह मसीह है।
परंतु किसी ने कहा,
क्यों, क्या मसीह गलील से आएंगे? क्या बाइबल में यह नहीं लिखा है कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएंगे जहां दाऊद रहते थे?
तब उनके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कई उन्हें पकड़ना चाहते थे परंतु किसी ने उन पर हाथ न डाला। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा,
तुम उसे क्यों नहीं लाए?
सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया,
क्या तुम भरमाए गए हो? क्या अधिकारियों या फरीसियों में से किसी ने भी उन पर विश्वास किया है? परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते दंडित हैं।
निकोदीमस ने उनसे कहा,
क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वे क्या करता है दोषी ठहराती है?
उन्होंने उसे जवाब दिया,
क्या तुम भी गलील के हो? ढूंढो और देखो कि गलील से कोई भविष्यवक्ता प्रकट नहीं होने का।
तब सब लोग अपने अपने घर चले गए। यूहन्ना अध्याय 8। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गए और सवेरे फिर मंदिर में आए। तब सब लोग उनके पास आए और वे बैठकर उन्हें उपदेश देने लगे। फिर धार्मिक पुरोहित और फरीसी एक महिला को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा,
गुरु, यह महिला व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी महिलाओं को पत्थर वाह करें। आप इस महिला के विषय में क्या कहते हैं?
उन्होंने यीशु को परखने के लिए यह बात कही थी ताकि उन पर दोष लगाने के लिए कोई मौका पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगे। जब वे उनसे पूछते ही रहे तो उन्होंने सीधे होकर उनसे कहा,
तुम में जो बेगुनाह हो वही पहले उसको पत्थर मारे।
वह फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगे। परंतु यह सुनकर सब के सब, बड़ों से लेकर छोटों तक, सब के सब एक एक करके निकल गए और यीशु अकेले रह गए। वे स्त्री भी वहीं बीच में खड़ी थी। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा,
वे सब कहां गए? क्या किसी ने तुम पर सजा की आज्ञा ना दी?
उसने कहा,
प्रभु, किसी ने नहीं।
यीशु ने कहा,
मैं भी तुम पर सजा की आज्ञा नहीं देता, जाओ और फिर गुनाह ना करना।
एक बार यीशु ने फिर लोगों से कहा,
जगत की रोशनी मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरे में ना चलेगा परंतु जीवन की रोशनी पाएगा।
फरीसियों ने उनसे कहा,
आप अपनी गवाही खुद ही देते हैं, आपकी गवाही ठीक नहीं।
यीशु ने उनको उत्तर दिया,
हालांकि मैं अपनी गवाही खुद देता हूं तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं या कहां जाऊंगा। तुम मुंह देखा इंसाफ करते हो, मैं किसी का इंसाफ नहीं करता, और यदि मैं इंसाफ करूं भी तो मेरा इंसाफ सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिन्होंने मुझे भेजा है। तुम्हारी धार्मिक पुस्तक में भी तो लिखा है कि दो व्यक्तियों की गवाही मिलकर पक्की होती है, एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और दूसरी और पिता मेरी गवाही देते हैं जिन्होंने मुझे भेजा है।
उन्होंने यीशु से कहा,
आपके पिता कहां है?
यीशु ने उत्तर दिया,
ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते,
यह बातें उन्होंने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, परंतु किसी ने उन्हें ना पकड़ा, क्योंकि उनका समय अब तक नहीं आया था। यीशु ने फिर उन लोगों से कहा,
मैं जाता हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते।
यह सुनकर यहूदियों ने कहा,
क्या वह खुद को मार डालेगा जो कहता है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते हो?
यीशु ने उनसे कहा,
तुम पृथ्वी पर के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे।
उन्होंने यीशु से कहा,
आप कौन हैं?
यीशु ने उनसे कहा,
मैं वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ कहना और फैसला लेना है, परंतु मेरे भेजने वाले पिता सच्चे हैं, और जो मैंने उनसे सुना है वही दुनिया के लोगों से कहता हूं।
वह ना समझे कि यीशु हमसे पिता के विषय में कहते हैं। तब यीशु ने कहा,
जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं ही मनुष्य का पुत्र हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरे पिता जिन्होंने मुझे भेजा है मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जिससे वो खुश होते हैं।
वह ये बातें कह ही रहे थे कि कई लोगों ने उन पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया था कहा,
यदि तुम मेरी शिक्षा में बने रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य ठहरोगे। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी।
उन्होंने यीशु को उत्तर दिया,
हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं हुए, फिर आप कैसे कहते हैं कि तुम आजाद हो जाओगे?
यीशु ने उनको उत्तर दिया,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। गुलाम सदा घर में नहीं रहता, लेकिन पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें आजाद करेगा तो सचमुच तुम आजाद हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरी बातें तुम्हारे अंदर मानो जगह नहीं पाती, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है।
उन्होंने यीशु को उत्तर दिया,
हमारा पिता तो अब्राहम है।
यीशु ने उनसे कहा,
यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम की तरह काम करते, लेकिन तुम मुझको मार डालना चाहते हो। मैंने तुम्हें वो सच्ची बातें बताई जो मैंने परमेश्वर से सुनी, ये तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो।
उन्होंने उनसे कहा,
हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर।
यीशु ने उनसे कहा,
यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं। मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु परमेश्वर ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरी बातें सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो शुरुआत से खूनी है, वो सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं तो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे गुनाहगार ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर की ओर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, परंतु तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि परमेश्वर की तरफ से नहीं हो।
यह सुन यहूदियों ने उनसे कहा,
क्या हम ठीक नहीं कहते हैं कि आप सामरी हैं और आप में दुष्ट आत्मा है?
यीशु ने उत्तर दिया,
मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं है, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो, परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूँ। हाँ, एक तो हैं जो चाहते हैं और न्याय करते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरी बातों को मानेगा तो वो अनंत काल तक मौत को ना देखेगा।
यहूदियों ने उनसे कहा,
अब हमने जान लिया है कि आप में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मौत का स्वाद ना चखेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, क्या आप उससे बड़े हैं? आप अपने आप को क्या ठहराते हैं?
यीशु ने उत्तर दिया,
यदि मैं खुद अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं। जिन्हें तुम अपने पिता होने का दावा करते हो, वही मेरी महिमा करने वाले मेरे पिता हैं। तुमने तो उन्हें नहीं जाना, परंतु मैं उन्हें जानता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं उन्हें नहीं जानता, तो मैं भी तुम्हारे समान ही झूठा ठहरूंगा। लेकिन मैं उन्हें जानता हूं और उनकी बातों को मानता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, उसने देखा और खुश हुआ।
यहूदियों ने उनसे कहा,
अब तक आप 50 साल के नहीं हुए, फिर भी कहते हैं आपने अब्राहम को देखा है।
यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ।
तब उन्होंने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, लेकिन यीशु छिपकर मंदिर से निकल गए। यूहन्ना अध्याय 9। एक बार यीशु और उनके शिष्यों ने एक अंधे आदमी को देखा। उसे देखकर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा,
गुरु, यह मनुष्य अंधा क्यों जन्मा है? इसके या इसके माता पिता के पाप के कारण?
यीशु ने उत्तर दिया,
ना तो इसके पाप के कारण और ना ही इसके माता पिता के, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा है, उनके काम हमें दिन ही दिन में करना जरूरी है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ।
यह कहकर उन्होंने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी। उस मिट्टी को लेकर उस अंधे की आंखों पर लगाकर यीशु ने उससे कहा,
जाओ शिलोह के कुंड में धो लो।
तब उसने वैसा ही किया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे,
क्या ये वही नहीं जो बैठकर भीख मांगा करता था?
कितनों ने कहा,
ये वही है।
दूसरों ने कहा,
नहीं, किंतु ये उसके समान है।
उसने कहा,
मैं वही हूँ।
तब वह उससे पूछने लगे,
तुम्हारी आंखें कैसे खुल गईं?
उसने उत्तर दिया,
यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शिलो में जाकर धो लो। मैंने वैसा ही किया और देखने लगा हूँ।
उन लोगों ने उससे पूछा,
वे कहाँ हैं?
उसने कहा,
मैं नहीं जानता।
तब लोग उस व्यक्ति को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने उसकी आंखों को ठीक किया था, वह सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा,
तुम्हारी आंखें कैसे खुल गईं?
उसने उनसे कहा,
उस व्यक्ति ने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखने लगा हूँ।
यह सुनकर कई फरीसी कहने लगे,
ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त के दिन का पालन नहीं करता।
दूसरों ने कहा,
पापी मनुष्य कैसे इस तरह के चिन्ह दिखा सकता है?
उन लोगों में फूट पड़ गई। उन लोगों ने उस व्यक्ति से कहा,
जिसने तुम्हारी आंखें खोली उनके बारे में तुम क्या कहते हो?
उसने कहा,
वह भविष्यवक्ता है।
जिस व्यक्ति की आंखें खुल गई थी, यहूदियों ने उसके माता पिता को बुलाकर उसके अंधेपन के बारे में पूछा। जब उन्होंने उन लोगों को यह बताया कि वह अंधा ही जन्मा था, तब उन्हें विश्वास न हुआ। उन्होंने उनसे पूछा,
अब वो कैसे देखने लगा है?
उसके माता पिता ने उत्तर दिया,
हम तो जानते हैं कि हमारा बेटा अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते
कि अब वो कैसे देखने लगा है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो स्याना है, उसी से पूछ लीजिए, वो अपने विषय में खुद ही बता देगा।
ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। वे यहूदी आपस में एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि यीशु मसीह है तो उसे आराधनालय से निकाला जाएगा। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा कि वह सयाना है, उसी से पूछ लीजिए। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा,
परमेश्वर की बड़ाई करो, हम तो जानते हैं कि वो आदमी दुष्ट है।
उसने उत्तर दिया,
मैं नहीं जानता कि वह दुष्ट है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखने लगा हूँ।
उन्होंने उससे फिर कहा,
उसने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम्हारी आंखें कैसे खोली?
उसने उनसे कहा,
मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना, फिर दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शिष्य होना चाहते हो?
तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले,
तुम ही उसके शिष्य हो, हम तो मूसा के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहां से आया है।
उसने उनको उत्तर दिया,
यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि वे कहां के हैं, तो भी उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उनकी इच्छा पर चलता हो तो वह उन लोगों की सुनते हैं। जगत की शुरुआत से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि ये इंसान परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता।
उन्होंने उसको उत्तर दिया,
तुम्हारा जन्म तो पाप में हुआ है, तुम हमें क्या सिखाते हो?
यीशु ने सुना कि उन लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया है। जब उससे मुलाकात हुई तो यीशु ने कहा,
क्या तुम परमेश्वर के बेटे पर विश्वास करते हो?
उसने उत्तर दिया,
प्रभु वह कौन है कि मैं उन पर विश्वास करूं?
यीशु ने उससे कहा,
तुमने उसे देखा है, और जो तुम्हारे साथ बातें कर रहा है वही है।
उसने कहा,
प्रभु मैं विश्वास करता हूँ,
और उसने यीशु को दंडवत किया। तब यीशु ने कहा,
मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं।
जो फरीसी उनके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उनसे कहा,
क्या हम भी अंधे हैं?
यीशु ने उनसे कहा,
यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है।
यूहन्ना अध्याय 10।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु दूसरे किसी रास्ते से प्रवेश करता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से भीतर प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है और उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे पराए व्यक्ति के पीछे नहीं जाएंगी, लेकिन उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का आवाज नहीं पहचानती।
यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि वह उनसे क्या कहना चाहते हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो मुक्ति पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है,
भेड़िये को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है, उसे भेड़ों की फिक्र नहीं होती है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानते हैं उसी तरह मैं पिता को जानता हूँ। मैं अपनी भेड़ों को भी उसी तरह जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूरी है। वे मेरा आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखते हैं क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूं। कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे खुद ही देता हूँ। मुझे उसे देने का भी अधिकार है और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है।
इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से लोग कहने लगे कि यीशु में दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा,
ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है?
यरूशलेम में समर्पण पर्व हुआ और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहे थे। तब यहूदियों ने उन्हें आकर घेर लिया और पूछा,
आप हमें कब तक दुविधा में रखेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमसे साफ कह दें।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
मैं तुमसे कह चुका हूँ लेकिन तुम मानते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरी बातें मानती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी बर्बाद ना होंगी, ना ही कोई उन्हें मेरे हाथों से छीन लेगा। मेरे पिता ने उन्हें मुझको दिया है। मेरे पिता सबसे बड़े हैं, कोई उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं।
यह सुनकर यहूदियों ने यीशु को पथरवाह करने के लिए फिर पत्थर उठाए। तब यीशु ने उनसे कहा,
मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थर मारते हो?
यहूदियों ने उन्हें उत्तर दिया,
भले काम के लिए हम आपको पत्थरवाह नहीं करते लेकिन परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि आप मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाते हैं।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
क्या तुम्हारी धार्मिक किताब में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा। जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र बाइबल की बात लोप नहीं हो सकती, और जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, उससे तुम कहते हो कि तुम निंदा करते हो क्योंकि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो लेकिन उन कामों पर विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ।
तब उन्होंने फिर यीशु को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वह उनके हाथ से निकल गए। उसके बाद वह यर्दन के पार उस स्थान पर चले गए जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहे। कई लोग उनके पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने यीशु के विषय में कहा था वह सब सच था, और वहां बहुत से लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। यूहन्ना अध्याय 11। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम का एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। लाजर इसी का भाई था, इसलिए उसकी बहनों ने यीशु को कहलवा भेजा,
प्रभु जिससे आप प्यार करते हैं वो बीमार है।
यह सुनकर यीशु ने कहा,
ये बीमारी मौत की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर के बेटे की महिमा हो।
यीशु मार्था, उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखते थे, इसलिए जब उन्होंने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वे थे वहां 2 दिन और ठहर गए। इसके बाद यीशु ने शिष्यों से कहा,
आओ हम फिर यहूदिया को चलें।
शिष्यों ने उनसे कहा,
गुरुजी, अभी तो यहूदी आपको पथराव करना चाहते थे, क्या आप फिर भी वहीं जाना चाहते हैं?
यीशु ने उत्तर दिया,
क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत की रोशनी को देखता है, लेकिन यदि कोई रात में चलता है तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं।
यीशु ने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगे,
हमारा दोस्त लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जा रहा हूं।
तब शिष्यों ने उनसे कहा,
प्रभु, यदि वो सो गया है तो उठ जाएगा।
यीशु ने उसकी मौत के बारे में कहा था, परंतु वे समझे कि उन्होंने लाजर की नींद में होने के बारे में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया,
लाजर मर गया है, मैं तुम्हारे कारण खुश हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। अब आओ हम उसके पास चलें।
तब थोमा ने, जो दिदिमुस कहलाता है, अपने साथ के शिष्यों से कहा,
आओ हम भी उनके साथ मरने को चलें।
वहां आकर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम से कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के बारे में शांति देने के लिए आए थे, इसलिए मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उनसे भेंट करने के लिए गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा,
प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई कभी ना मरता, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे।
यीशु ने उनसे कहा,
तुम्हारा भाई जी उठेगा।
मार्था ने उनसे कहा,
मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा।
यीशु ने उससे कहा,
पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो?
मार्था ने उससे कहा,
हाँ प्रभु, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि परमेश्वर के बेटे मसीह जो जगत में आने वाले थे वह आप ही हैं।
यह सुनकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा,
गुरु यही हैं और तुम्हें बुलाते हैं।
यह सुनते ही मरियम तुरंत उठकर यीशु के पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचे थे, लेकिन उसी जगह में थे जहां मार्था ने उनसे भेंट की थी। कुछ यहूदी मरियम के साथ घर में थे और उसे तसल्ली दे रहे थे। उन्होंने देखा कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है और यह समझकर कि वह कब्र पर रोने के लिए जाती है, उसके पीछे चल पड़े। जब मरियम वहां यीशु के पास पहुंची तो उन्हें देखते ही उनके पांव पर गिरकर उसने कहा,
प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई न मरता।
जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल होकर कहा,
तुमने उसे कहां रखा है?
उन्होंने यीशु से कहा,
प्रभु, चलकर देख लीजिए।
यीशु के आंसू बहने लगे। तब यहूदी कहने लगे,
देखो वो लाजर से कैसा प्रेम करते थे।
परंतु उनमें से कितनों ने कहा,
क्या ये जिन्होंने अंधे की आंखें खोली वे ऐसा कुछ ना कर सके जिससे ये मनुष्य ना मरता?
यीशु मन में बहुत ही दुखी होकर कब्र पर आए। वहां एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा,
पत्थर को हटाओ।
मृतक की बहन मार्था उनसे कहने लगी,
प्रभु, उसमें से तो अब बदबू आती होगी क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं।
यीशु ने उससे कहा,
क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर के काम को देखोगी?
तब उन लोगों ने उस पत्थर को हटाया फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा,
पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि आप सदा मेरी सुनते हैं, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि लोग विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है।
ये कहकर यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा,
लाजर निकल आओ।
ये सुनकर जो मर गया था वह हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा,
उसके बंधन खोल दो और उसे जाने दो।
तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा था, उनमें से कई लोगों ने उन पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों की खबर दी। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा,
हम क्या करते हैं? यह आदमी तो बहुत चिन्ह दिखाता है। अगर हम उसे यों ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और लोगों पर अधिकार कर लेंगे।
तब उनमें से कायफा नामक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का पुरोहित था, उनसे कहा,
तुम कुछ नहीं जानते और ना ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, बजाय इसके कि देश राष्ट्र का नाश हो।
ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस साल का महायाजक होने के नाते भविष्यवाणी की कि यीशु उस देश के लिए मरेंगे, न केवल उस देश के लिए लेकिन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दें। उसी दिन से वे यीशु को मार डालने की साजिश करने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में खुले में दिखाई नहीं दिए, परंतु वहां से जंगल के पास के देश में इफ्राइम नामक एक नगर को चले गए। वे अपने शिष्यों के साथ वहीं रहने लगे। यहूदियों का फसा का पर्व निकट था और बहुत से लोग फसा से पहले गांव से यरूशलेम गए कि अपने आप को शुद्ध करें। वो यीशु को ढूंढने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे,
तुम क्या समझते हो? क्या वो पर्व में नहीं आएंगे?
महायाजकों और फरीसियों ने भी आज्ञा दे रखी थी कि यदि कोई ये जानता है कि यीशु कहाँ है तो बता दे, ताकि उन्हें पकड़ लिया जाए। यूहन्ना अध्याय 12। फिर यीशु फसा के 6 दिन पहले बेतनिया आए, जहां लाजर था। इसी लाजर को यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन लोगों ने यीशु के लिए खाना तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो यीशु के साथ खाना खाने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का कीमती करीब 0.5 लीटर इत्र लेकर यीशु के पांव पर उंडेला और अपने बालों से उनके पांव पोंछे। इत्र की खुशबू से सारा घर भर गया। लेकिन उनके शिष्यों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक शिष्य, जो उन्हें पकड़वाना चाहता था, कहने लगा,
ये इत्र 300 चांदी के सिक्कों में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया?
उसने यह बात इसलिए ना कही कि उसे गरीबों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। लेकिन उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा,
उसे रहने दो, उसने मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए ये किया है, क्योंकि गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा ना रहूंगा।
यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि यीशु वहां हैं, और लोग न केवल यीशु के कारण आए लेकिन इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की योजना बनाई, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी यीशु पर विश्वास करने लगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, जो त्योहार में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आने वाले हैं, खजूर की डालियां ली और उनसे भेंट करने निकले। वे पुकारने लगे,
होसन्ना, धन्य इसराइल के राजा जो प्रभु के नाम से आते हैं।
यीशु को एक गधे का बच्चा मिला और वह उस पर बैठ गए, जैसा लिखा है,
सियोन की बेटी, मत डरो, देखो तुम्हारे राजा गधे के बच्चे पर बैठकर चले आते हैं।
उनके शिष्य ये बातें पहले ना समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको याद आया कि ये बातें उनके बारे में लिखी हुई थीं और लोगों ने उनसे इस तरह का बर्ताव किया था। तब भीड़ में से लोगों ने, जो उस समय यीशु के साथ थे, यह गवाही दी कि उन्होंने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इस कारण लोग उनसे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यीशु ने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा,
सोचो तो सही कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। देखो, संसार यीशु को मानने लगा है।
जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे, उनमें से कई यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की,
श्रीमान, हम यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं।
फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास को बताया। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने यीशु को, तब यीशु ने उन लोगों से कहा,
वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है। जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने जीवन को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। जो इस जगत में अपने जीवन को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे चल पड़े, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। अगर कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेंगे। अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? पिता, मुझे इस घड़ी से बचाइए, परंतु मैं तो इसी कारण इस समय तक पहुंचा हूं। पिता, अपने नाम की महिमा कीजिए।
तब ये आकाशवाणी हुई,
मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा।
तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे,
बादल गरजा।
दूसरों ने कहा,
कोई स्वर्गदूत उनसे बोला।
इस पर यीशु ने कहा,
ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है, इस जगत का अधिकारी निकाल दिया जाएगा। यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा।
ऐसा कहकर उन्होंने यह बतला दिया कि वे कैसी मौत से मरेंगे। यह सुनकर लोगों ने उनसे कहा,
हमने मजहब की यह बात सुनी है कि मसीह हमेशा रहेंगे, फिर आप क्यों कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूरी है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है?
यीशु ने उनसे कहा,
ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान हो जाओ।
ये बातें कहकर यीशु चले गए और उनसे छिपे रहे। यीशु ने उन लोगों के सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन लोगों ने उन पर विश्वास ना किया, ताकि यशाया भविष्यवक्ता का वह वचन पूरा हो जो उसने कहा,
प्रभु, हमारे समाचार को किसने माना है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ?
इस कारण वो विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशाया ने फिर कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, मन से समझें, मुड़ें और मैं उन्हें ठीक करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कहीं क्योंकि उसने यीशु की महिमा देखी थी और उसने उनके विषय में बातें की थी। फिर भी अधिकारियों में से भी कई लोगों ने उन पर विश्वास किया, लेकिन फरीसियों के कारण खुलेआम नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा,
जो मुझ पर भरोसा करता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले परमेश्वर पर भरोसा करता है। जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले परमेश्वर को देखता है। मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु इसका उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें स्वीकार नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात वचन। जो मैंने कहा है वही आखिरी दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि ये बातें मैंने अपनी ओर से नहीं कही लेकिन पिता जिन्होंने मुझे भेजा और आज्ञा दी है कि मैं क्या क्या कहूं। मैं जानता हूं कि पिता की आज्ञा हमेशा की जिंदगी है, इसलिए मैं वैसा ही बोलता हूं जैसा पिता ने मुझसे कहा है।
यूहन्ना अध्याय 13। फसा के उत्सव से पहले यीशु ने जान लिया कि मेरा वह समय आ पहुंचा है कि मैं दुनिया को छोड़कर पिता के पास जाऊं। तब वे अपने लोगों से जो दुनिया में थे जैसा प्रेम करते थे वैसा ही प्रेम अंत तक करते रहे। भोजन के अंत में शैतान शिमोन के बेटे यहूदा इस्करियोती के मन में यीशु को पकड़वाने का विचार डाल चुका था। तब यीशु इस आश्वासन के साथ कि परमेश्वर पिता ने सब कुछ उनके हाथों कर दिया है और वे परमेश्वर के पास से आए हैं और परमेश्वर के पास जाने वाले हैं, यीशु भोजन पर से उठे और उन्होंने अपना चोगा उतारकर अंगोछे से अपनी कमर बांधी। फिर बर्तन में पानी भरकर शिष्यों के पांव धोने और उसी अंगोछे से पोंछने लगे। जब वे शिमोन पत्रस के पास आए तब उसने उनसे कहा,
प्रभु क्या आप मेरे पांव धोना चाहते हैं?
यीशु ने उसको उत्तर दिया,
जो मैं करता हूं उसे तुम नहीं जानते परंतु कुछ समय बाद समझोगे।
पत्रस ने उनसे कहा,
मैं आपको अपने पांव कभी ना धोने दूंगा।
ये सुनकर यीशु ने उससे कहा,
अगर मैं तुम्हें ना धोऊं तो मेरा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं।
शिमोन पत्रस ने उनसे कहा,
प्रभु तो मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सिर भी धो दीजिए।
यीशु ने उससे कहा,
जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल साफ है और तुम लोग साफ हो परंतु सब के सब नहीं।
यीशु अपने पकड़वाने वाले को जानते थे इसलिए उन्होंने कहा, तुम सब के सब नहीं। जब वह उनके पांव धो चुके तो उन्होंने अपना चोगा पहना और फिर बैठ गए। वह उनसे कहने लगे,
क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, ठीक करते हो क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर भी तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने नमूना रखा है ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो, यदि उन पर चलो तो आशीषित हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु ऐसा इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई। अब मैं ऐसा होने से पहले तुम्हें सावधान करता हूं ताकि जब ऐसा हो तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को अपनाता है वो मुझे अपनाता है और जो मुझे अपनाता है वो मेरे भेजने वाले को भी अपनाता है।
ये बातें कहकर यीशु आत्मा में बेचैन हुए और उन्होंने ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। शिष्य ये शक करते हुए कि वे किसके बारे में ऐसा कहते हैं एक दूसरे की ओर देखने लगे। यीशु के शिष्यों में से एक जिससे वे प्रेम करते थे उनके सीने की ओर झुका हुआ बैठा था। तब शिमोन पतरस ने उसकी ओर इशारा करके कहा,
वह प्रभु से पूछें किसके बारे में कह रहे हैं।
तब उसने उसी तरह यीशु के सीने की ओर झुक के पूछा,
प्रभु वह कौन है।
यीशु ने उत्तर दिया,
जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा वही है।
तब उन्होंने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा,
जो तुम करते हो जल्दी करो।
परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उन्होंने ये बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए कुछ लोगों ने समझा कि यीशु उससे कह रहे हैं कि जो कुछ हमें त्योहार के लिए चाहिए वह मोल ले या गरीबों को कुछ दे दे। तब वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और वो रात का समय था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा,
मनुष्य के बेटे की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा भी उसमें हुई। परमेश्वर पिता भी अपने में उसकी महिमा करेंगे, बल्कि तुरंत करेंगे। हे बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं। तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी के द्वारा सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो।
शिमोन पतरस ने उनसे कहा,
प्रभु आप कहां जाते हैं।
यीशु ने उत्तर दिया,
जहां मैं जाता हूं वहां अभी तुम मेरे पीछे आ नहीं सकते, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आओगे।
पतरस ने उनसे कहा,
हे प्रभु मैं अभी आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं तो आपके लिए अपनी जान तक दे दूंगा।
यीशु ने उत्तर दिया,
क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मुर्गे के बांग देने के पहले तुम तीन बार मेरा इनकार करोगे।
यूहन्ना अध्याय 14।
तुम्हारा मन ना घबराए, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि वे ना होते तो मैं तुमसे वैसा कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। जहां मैं जाता हूं वहां का रास्ता तुम जानते हो।
थोमा ने उनसे कहा,
प्रभु हम नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो रास्ता कैसे जानेंगे।
यीशु ने उससे कहा,
रास्ता और सच्चाई और जिंदगी मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। अगर तुम मुझे पहचानते तो मेरे पिता को भी पहचानते, और अब उन्हें जानते हो और उन्हें देखा भी है।
फिलिपुस ने उनसे कहा,
प्रभु हमें पिता को देखना है, यही हमारे लिए काफी है।
यीशु ने उससे कहा,
फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, फिर भी क्या तुम मुझे नहीं जानते। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तुम क्यों कहते हो कि हमें पिता को देखना है, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करते हैं। मेरा ही विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरा भरोसा करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो भी उन कामों को करेगा जिन्हें मैं करता हूं, यहां तक कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा, ताकि बेटे के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और मददगार देंगे, ताकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सच्चाई का आत्मा, जिसे संसार पा नहीं सकता, क्योंकि वो ना तो उसे देखता है और ना ही उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन आज्ञाओं को मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखता है। मैं भी उससे प्रेम रखता हूं और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा।
उस यहूदा ने, जो इस्करियोती ना था, उनसे कहा,
प्रभु, ऐसा क्यों कि आप अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हैं लेकिन संसार पर नहीं?
यीशु ने उसको उत्तर दिया,
यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरी बातों को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेंगे, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ रहने लगेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वो मेरे वचन को नहीं मानता। जो वचन तुम सुनते हो, वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिन्होंने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु मददगार अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेंगे, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, उन बातों की तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसी शांति संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना व्याकुल हो। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। यदि तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़े हैं। मैंने ऐसा होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब ऐसा हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब से तुम्हारे साथ और अधिक बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का अधिकारी आता है और मुझ में उसका कोई भाग नहीं। परंतु ये इसलिए होता है ताकि दुनिया जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, और जिस प्रकार पिता ने मुझे आज्ञा दी, मैं वैसे ही करता हूं। उठो, यहां से चलें।
यूहन्ना अध्याय 15।
अंगूर की सच्ची लता मैं हूं और मेरे पिता किसान हैं। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उन्हें वो काट डालते हैं। जो फल लाती है, उसे वो छांटते हैं ताकि और फले। तुम उन बातों के कारण जो मैंने तुमसे कही हैं शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि अंगूर की लता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं अंगूर की लता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उन डालियों को बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने भी तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उनके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी खुशी तुम में बनी रहे और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा आदेश ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही प्रेम तुम भी एक दूसरे से रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे। जिन बातों का मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उन्हें यदि तुम करते हो तो तुम मेरे दोस्त हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं ताकि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे दुश्मनी रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी दुश्मनी रखी। संसार अपनों से प्रीति रखता है। यदि तुम संसार के होते तो वो तुमसे प्रीति रखता। तुम संसार के नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे दुश्मनी रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसे याद रखो। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले परमेश्वर को नहीं जानते। अगर मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे दोषी ना ठहरते। अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे दुश्मनी रखता है वो मेरे पिता से भी दुश्मनी रखता है। यदि मैं उनके बीच वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे दोषी नहीं ठहरते। लेकिन अब उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से दुश्मनी की है। ये इसलिए हुआ ताकि वो वचन पूरा हो जो उनकी धर्म पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने मुझसे बेकार में बैर किया। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सच्चाई का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो।
यूहन्ना अध्याय 16।
ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही ताकि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, बल्कि वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि वो परमेश्वर की सेवा करता है। ये वे इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना तो पिता को जाना है और ना ही मुझे जानते हैं। लेकिन ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आए तो तुम्हें याद आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था। मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं उस समय तुम्हारे साथ था। अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि मैं कहाँ जाता हूँ। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो आकर संसार को पाप, धार्मिकता और इंसाफ के विषय में कायल करेगा। पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि दुनिया का अधिकारी दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। लेकिन जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे।
तब उनके कई शिष्यों ने आपस में कहा,
यह बात क्या है जो वह हमसे कहते हैं,
कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, परंतु फिर थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे, और यह इस कारण कि मैं पिता के पास जाता हूँ।
तब उन्होंने कहा,
यह थोड़ी देर का क्या मतलब है? हम नहीं जानते कि वह कहना क्या चाहते हैं।
यह जानकर कि वह मुझसे पूछना चाहते हैं, यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे, परंतु फिर थोड़ी देर बाद मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। जब स्त्री के बच्चा उत्पन्न करने का समय आता है तो उसको दर्द होता है, क्योंकि ऐसा होता ही है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तब जगत में एक मनुष्य का जन्म हुआ। इस आनंद से वो स्त्री अपने कष्ट को फिर याद नहीं करती है। तुम्हें भी अभी तो दर्द है, लेकिन मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में खुशी होगी। तुम्हारी ये खुशी कोई तुमसे छीन ना पाएगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देंगे। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वो समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में फिर बातें नहीं करूंगा, किंतु स्पष्ट रूप से तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो खुद ही तुमसे प्यार करते हैं, क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया है और ये भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ।
यीशु के शिष्यों ने कहा,
देखिए, अब तो आप साफ साफ कहते हैं और दृष्टांत रूप में नहीं कहते। अब हम जान गए कि आप सब कुछ जानते हैं। यह आवश्यक नहीं कि कोई आपसे पूछे। इससे हम यह मान लेते हैं कि आप परमेश्वर से निकले हैं।
ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा,
क्या तुम अब भरोसा करते हो? देखो, वो समय आता है, वरन आ चुका है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। लेकिन मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। दुनिया में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धीरज रखो, मैंने दुनिया को जीत लिया है।
यूहन्ना अध्याय 17। ये बातें कहने के बाद यीशु ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा,
पिता, वो समय आ पहुंचा है, अब अपने बेटे की महिमा कीजिए, ताकि बेटा भी आपकी महिमा करे, क्योंकि आपने उसे सब मनुष्यों पर अधिकार दिया है। ये इसलिए कि जिन्हें आपने उसे दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। अनंत जीवन ये है कि वे आप सर्वश्रेष्ठ और सच्चे परमेश्वर को एवं यीशु मसीह को, जिसे आपने भेजा है, जाने। जो काम आपने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर आपको इज्जत दी है। अब पिता, आप अपने साथ उस महिमा से मेरी महिमा कीजिए, जो मेरी महिमा जगत के होने से पहले आपके साथ थी। मैंने आपका नाम उन लोगों पर प्रकट किया जिन्हें आपने जगत में से मुझे दिया। वे आपके ही थे और आपने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने आपके वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ आपने मुझे दिया है वो सब आपकी तरफ से है, क्योंकि जो बातें आपने मुझे दी उन बातों को मैंने उन्हें दिया, और उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। उन्होंने सच सच जान लिया है कि मैं आपकी ओर से निकला हूं। उन्होंने ये विश्वास कर लिया है कि आप ही ने मुझे भेजा है। मैं सारी दुनिया के लिए विनती नहीं करता, मैं उन्हीं के लिए विनती करता हूं जिन्हें आपने मुझे दिया है, क्योंकि वे आपके हैं। जो कुछ मेरा है वो सब आपका है, और जो आपका है वो मेरा है। इनके द्वारा मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं इसके आगे जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। मैं आपके पास आता हूं, पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो आपने मुझे दिया है उनकी रक्षा कीजिए, ताकि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तब मैंने आपके उस नाम से जो आपने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि बाइबल की बात पूरी हो। परंतु अब मैं आपके पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने आपका वचन उन्हें पहुंचा दिया है। संसार ने उनसे शत्रुता की, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। मैं ये विनती नहीं करता कि आप उन्हें जगत से उठा लें, किंतु ये कि आप उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखें। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करें। आपका वचन सत्य है। जैसे आपने दुनिया में मुझे भेजा है वैसे ही मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा है। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, लेकिन उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, ताकि वे सब एक हों। पिता, जैसे आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, वैसे वे भी हम में हों, इसलिए कि सब लोग विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। वो महिमा जो आपने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, ताकि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और आप मुझ में, ताकि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और दुनिया जाने कि आप ही ने मुझे भेजा है, और जैसा आपने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे प्रेम रखा है। पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें आपने मुझे दिया है जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो आपने मुझे दी है, क्योंकि आपने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे अति पवित्र पिता, दुनिया ने आपको नहीं जाना, परंतु मैंने आपको जाना है, और इन्होंने भी जाना है कि आप ही ने मुझे भेजा है। मैंने आपका नाम उनको बताया है और बताता रहूंगा कि जो प्रेम आपको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं।
यूहन्ना अध्याय 18। यीशु ये बातें कहकर अपने शिष्यों के साथ किद्रोन के नाले के पार में गए। उनका पकड़वाने वाला यहूदा भी उस जगह को जानता था, क्योंकि यीशु अपने शिष्यों के साथ वहां अक्सर जाया करते थे। तब यहूदा पलटन को और प्रधान पुरोहितों और फरीसियों की ओर से सेवकों को लेकर दीपक, मशालें और हथियार लेकर वहां आया। उनके साथ क्या होने वाला है यह जानते हुए यीशु वहां से बाहर आए, और उन्होंने उन लोगों से पूछा,
किसे ढूंढते हो?
उन्होंने यीशु को उत्तर दिया,
यीशु नासरी को।
यीशु ने उनसे कहा,
मैं ही हूं।
उनका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। यीशु के ये कहते ही कि मैं हूं, वे पीछे हटे और जमीन पर गिर पड़े। तब यीशु ने फिर उनसे पूछा,
तुम किसको ढूंढते हो?
वे बोले,
यीशु नासरी को।
यीशु ने उत्तर दिया,
मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि वो मैं ही हूं। यदि तुम मुझे ही चाहते हो तो इन्हें जाने दो।
यह ऐसा इसलिए हुआ कि वह बात पूरी हो जो यीशु ने कही थी कि जिन्हें आपने मुझे दिया है उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। शिमोन पतरस ने अपने पास से तलवार निकाली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान काट दिया। उस दास का नाम मलखूस था। तब यीशु ने पतरस से कहा,
अपनी तलवार मयान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे ना पीऊं?
तब सिपाहियों, उनके अधिकारियों और यहूदियों के सेवकों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस साल के महापुरोहित काइफा का ससुर था। ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शिमोन पत्रस तथा एक और शिष्य भी यीशु के पीछे चल पड़े। ये शिष्य महापुरोहित का जाना पहचाना था। वह यीशु के साथ महापुरोहित के आंगन में गया, परंतु पत्रस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा शिष्य जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पत्रस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पत्रस से कहा,
क्या तुम भी इस मनुष्य के शिष्यों में से हो?
उसने कहा,
मैं नहीं हूँ।
दास और सेवक जाड़े के कारण कोयला जलाकर खड़े होकर आग ताप रहे थे। पत्रस भी उनके साथ खड़ा हुआ ताप रहा था। तब प्रधान पुरोहित ने यीशु से उनके शिष्यों के विषय में और उनके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया,
मैंने जगत से खुलकर बातें की, मैंने सभाओं और आराधनालय में जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तुम मुझसे क्यों पूछते हो? सुनने वालों से पूछो कि मैंने उनसे क्या कहा। देखो, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा।
जब यीशु ने यह कहा तो सेवकों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा,
क्या तू प्रधान पुरोहित को इस प्रकार उत्तर देता है?
यीशु ने उसे उत्तर दिया,
यदि मैंने बुरा कहा तो मुझे बताओ कि क्या बुरा कहा, परंतु यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो?
हन्ना ने उन्हें बंधे काइफा प्रधान पुरोहित के पास भेज दिया। तब उन लोगों ने पत्रस से कहा,
क्या तुम भी उनके शिष्यों में से हो?
उसने इनकार करके कहा,
मैं नहीं हूं।
प्रधान पुरोहित के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था और जिसका कान पत्रस ने काट डाला था बोला,
क्या मैंने तुम्हें यीशु के साथ बगीचे में ना देखा था?
पत्रस ने फिर इनकार किया और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। वह यीशु को काइफा के पास से किले में ले गए। वह सुबह का समय था, परंतु वे खुद किले के भीतर ना गए ताकि अशुद्ध ना हो परंतु फसा खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और उसने कहा,
तुम इस मनुष्य पर किस बात का दोष लगाते हो?
उन लोगों ने उसे उत्तर दिया,
यदि वे अपराधी ना होता तो हम उसे आपके हाथ ना सौंपते।
पिलातुस ने उनसे कहा,
तुम ही ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो।
यहूदियों ने उससे कहा,
हमें अधिकार नहीं कि किसी की जान लें।
यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उन्होंने कही थी कि उनका मरना कैसा होगा। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उसने उनसे पूछा,
क्या तुम यहूदियों के राजा हो?
यीशु ने जवाब में कहा,
क्या आप ये बात अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने मेरे विषय में आपसे कही?
पिलातुस ने उत्तर दिया,
क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारी ही जाति और महापुरोहितों ने तुम्हें मेरे हाथ सौंपा है, तुमने ऐसा क्या किया है?
यीशु ने उत्तर दिया,
मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अभी मेरा राज्य यहाँ का नहीं।
पिलातुस ने उनसे कहा,
तो क्या तुम राजा हो?
यीशु ने उत्तर दिया,
तुम ठीक कहते हो क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और मैं इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है।
पिलातुस ने उनसे कहा,
सत्य क्या है?
यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहने लगा,
मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, परंतु तुम्हारा यह रिवाज है कि मैं फंसे में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं?
तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा,
यीशु को नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो।
बरअब्बा एक डाकू था। योहन्ना अध्याय 19। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रखा। उन लोगों ने उन्हें बैंजनी वस्त्र पहनाया। वे उनके पास आकर कहने लगे,
यहूदियों के राजा प्रणाम,
और उन्होंने यीशु को थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा,
देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम्हें मालूम हो कि मैं इसमें कुछ भी दोष नहीं पाता।
तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी कपड़े पहने हुए बाहर निकले। पिलातुस ने उनसे कहा,
देखो ये पुरुष।
जब प्रधान पुरोहितों और सेवकों ने उन्हें देखा तो चिल्लाकर कहा,
उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर।
पिलातुस ने उनसे कहा,
तुम ही उन्हें लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मुझे उसमें कोई दोष दिखाई नहीं देता।
यहूदियों ने पिलातुस को उत्तर दिया,
हमारा भी कानून है, उस कानून के अनुसार वो मारे जाने के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा है।
जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। वो फिर किले के भीतर गया और यीशु से बोला,
तुम कहाँ के हो?
परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। पिलातुस ने उससे कहा,
मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें छोड़ देने का और क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है?
यीशु ने उत्तर दिया,
यदि तुम्हें ऊपर से ना दिया जाता तो तुम्हारा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तुम्हारे हाथ पकड़वाया है उसका अपराध ज्यादा है।
यह सुनकर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, लेकिन यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा,
यदि आप इसको छोड़ देंगे तो आपकी वफादारी कैसर के लिए नहीं है। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का विरोध करता है।
ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया। उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, और वह न्याय आसन पर बैठ गया। ये फसा की तैयारी का दिन था और दोपहर का समय था। तब उसने यहूदियों से कहा,
देखो यही है तुम्हारा राजा।
परंतु वे चिल्लाए,
ले जाओ, ले जाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ।
पिलातुस ने उनसे कहा,
क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं?
प्रधान पुरोहितों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं है। तब उसने यीशु को उनके हाथों सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाए जाएं। उसके बाद वे यीशु को ले गए। वे अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गए जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, इब्रानी में उसे गुलगुता कहा जाता है। वहां उन्होंने यीशु और उनके साथ और दो चोरों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को बाएं और दूसरे को दाएं, और बीच में यीशु को चढ़ाया। पिलातुस ने एक आरोप पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। उस पर इस प्रकार लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह आरोप पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह जगह जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे नगर के पास थी। यह पत्र इब्रानी, लैटिन और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के महापुरोहित ने पिलातुस से कहा,
यहूदियों का राजा मत लिखो, परंतु ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ।
पिलातुस ने उत्तर दिया,
मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया।
जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उन लोगों ने यीशु के कपड़े लेकर चार हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सिलाई के ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि हम उसको ना फाड़ें, लेकिन इस पर पर्ची डालें कि वह किसका होगा। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कपड़ों पर पर्ची डाली। इसलिए सिपाहियों ने ऐसा ही किया। परंतु यीशु के क्रूस के पास उनकी माता और उनकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस शिष्य को जिससे वे प्रेम रखते थे पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा,
महिला देखो ये आपका बेटा है।
उसके बाद उस शिष्य से कहा,
ये तुम्हारी माँ है।
उसी समय से वो शिष्य मरियम को अपने घर ले गया। इसके बाद यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, यीशु ने कहा,
मैं प्यासा हूँ।
ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन रखा था, इसलिए उन्होंने सिरके में भुगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उनके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा,
पूरा हुआ,
और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था, इसलिए यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनके पैर तोड़ दिए जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पर ना रहें। वे सबत का खास दिन था। सिपाहियों ने आकर पहले एक की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उनके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वे मर चुके हैं, तो उनकी टांगें ना तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उनका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत खून और पानी निकला। जिसने यह देखा उसी ने गवाही दी, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुईं कि बाइबल की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। एक अन्य स्थान पर यह लिखा है कि जिस यीशु को उन्होंने भेदा है वे उसी को देखेंगे। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का शिष्य था, पिलातुस से विनती की कि उसे यीशु की लाश ले जाने दी जाए। तब पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर यीशु की लाश को ले गया। निकोदीमस भी, जो पहले यीशु के पास एक रात को गया था, लगभग 50 सेर मिला हुआ गंदरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लाश को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे खुशबूदार मसालों के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे एक बगीचा था। उस बगीचे में एक नई कब्र थी जिसमें कभी किसी को ना रखा गया था। यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। यूहन्ना अध्याय 20। सप्ताह के पहले दिन मरियम मग्दलेनी भोर को, जब अंधेरा ही था, कब्र पर आई। उसने पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़कर गई और शिमोन पतरस और उस दूसरे शिष्य के पास, जिससे यीशु प्रेम रखते थे, आकर कहा,
वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं, हम नहीं जानते कि उन्हें कहां रखा गया है।
तब पतरस और वह दूसरा शिष्य निकलकर कब्र की ओर चले। दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा शिष्य पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कपड़े पड़े देखे, फिर भी वह भीतर ना गया। तब शिमोन पतरस उसके बाद पहुंचा और कब्र के भीतर गया। उसने भी कपड़े पड़े देखे। उसने वह अंगोछा, जो यीशु के सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। दूसरा शिष्य भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और उसने देखकर विश्वास किया। वे अब तक पवित्र शास्त्र बाइबल की वे बात ना समझते थे कि यीशु को मरे हुओं में से जी उठना होगा। उसके बाद ये शिष्य अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही। उसने रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को, उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां पहले यीशु का शव पड़ा था। उन्होंने उससे कहा,
हे नारी, तुम क्यों रोती हो?
उसने उनसे कहा,
वे मेरे स्वामी को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्हें कहां रखा है।
यह कहकर वह पीछे मुड़ी और उसने यीशु को खड़े देखा, लेकिन ना पहचाना कि वे यीशु हैं। यीशु ने उससे कहा,
हे महिला, तुम क्यों रोती हो? किसको ढूंढती हो?
उसने माली समझकर उनसे कहा,
महाराज, यदि आपने उसे उठा लिया है तो मुझे बताओ कि उन्हें कहाँ रखा है ताकि मैं उन्हें ले जाऊं।
यीशु ने उससे कहा,
मरियम।
उसने पीछे मुड़कर कहा,
गुरुजी।
यीशु ने उससे कहा,
मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ।
मरियम मगदलेनी ने जाकर शिष्यों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझसे ये बातें कहीं। वो सप्ताह का पहला दिन था और शाम का समय था। यहूदियों के डर के कारण शिष्यों ने कमरे के दरवाजे बंद कर रखे थे। तब यीशु आए और बीच में खड़े होकर उनसे बोले,
तुम्हें शांति मिले।
ये कहकर यीशु ने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब शिष्य प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा,
तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ।
यह कहकर यीशु ने उन पर फूंका और उनसे कहा,
पवित्र आत्मा लो, जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके लिए वे माफ किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं।
उस समय जब यीशु आए तो 12 शिष्यों में से एक शिष्य थोमा, जो दिदुमुस कहलाता था, उनके साथ ना था। जब अन्य शिष्य उसे कहने लगे कि
हमने प्रभु को देखा है,
जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उनके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा।
8 दिन के बाद जब उनके शिष्य घर के भीतर थे तब थोमा भी उनके साथ था। दरवाजे बंद थे। तब यीशु ने फिर आकर और बीच में खड़े होकर कहा,
तुम्हें शांति मिले।
उन्होंने थोमा से कहा,
अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देखो और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डालो और अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बनो।
यह सुन थोमा ने उत्तर दिया,
हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।
यीशु ने उससे कहा,
तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, आशीषित वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया।
यीशु ने और भी कई चिन्ह शिष्यों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर के बेटे मसीह हैं और विश्वास करके उनके नाम से जीवन पाओ। यूहन्ना अध्याय 21। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे शिष्यों पर प्रकट किया। शिमोन पत्रस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल, जब्दी के पुत्र, और उनके शिष्यों में से 2 और लोग वहां इकट्ठे थे। शिमोन पत्रस ने उनसे कहा,
मैं मछली पकड़ने जाता हूँ।
उन लोगों ने उससे कहा,
हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं।
इसलिए वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन लोगों ने कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़े थे, तो भी शिष्यों ने उन्हें ना पहचाना कि ये यीशु हैं। तब यीशु ने उनसे कहा,
हे बच्चों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है?
उन लोगों ने उत्तर दिया,
नहीं।
यीशु ने उनसे कहा,
नाव की दहनी ओर जाल डालो तो पकड़ोगे।
तब उन्होंने जाल डाला, लेकिन मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। इसलिए उस शिष्य ने, जिससे यीशु प्यार करते थे, पत्रस से कहा,
ये तो प्रभु हैं।
शिमोन पत्रस ने यह सुनकर कि प्रभु हैं, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था। वह झील में कूद पड़ा, लेकिन बाकी शिष्य नाव पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा,
जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ।
शिमोन पत्रस ने नाव पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा,
आओ खाना खाएं।
लेकिन शिष्यों में से किसी को हिम्मत ना हुई कि उनसे पूछें कि वे कौन हैं, क्योंकि वे जानते थे कि हो ना हो ये प्रभु ही हैं। यीशु आए और उन्होंने शिष्यों को रोटी और मछली दी। यह तीसरी बार था कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद शिष्यों को दर्शन दिए थे। खाना खा लेने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा,
शिमोन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करते हो?
उसने यीशु से कहा,
हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ।
यीशु ने उससे कहा,
मेरे मेमनों को चराओ।
उन्होंने फिर दूसरी बार उससे कहा,
शिमोन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो?
उसने उनसे कहा,
हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ।
उन्होंने उससे कहा,
मेरी भेड़ों की रखवाली करो।
यीशु ने तीसरी बार उससे कहा,
शिमोन यूहन्ना के बेटे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो?
पतरस उदास हुआ कि यीशु ने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या वह उनसे प्रेम करता है। वह उनसे बोला,
हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप यह भी जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ।
यीशु ने उससे कहा,
मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तुम जवान थे तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहते थे वहाँ जाते थे, किंतु जब तुम बूढ़े होगे तो अपने हाथ फैलाओगे और दूसरा तुम्हारी कमर बांधकर जहाँ तुम ना चाहोगे वहाँ तुम्हें ले जाएगा।
यीशु ने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मौत से परमेश्वर की महिमा करेगा। ये कहकर यीशु ने उससे कहा,
मेरे पीछे हो लो।
पतरस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे से आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखते थे और जिसने खाने के समय उनके सीने की ओर झुककर पूछा था कि,
हे प्रभु, आपका पकड़वाने वाला कौन है?
उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा,
हे प्रभु, इसका क्या होगा?
यीशु ने उससे कहा,
यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुम्हें क्या, तुम मेरे पीछे आओ।
इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वह शिष्य ना मरेगा। यीशु ने उसे ये नहीं कहा था कि वह ना मरेगा, उन्होंने ये कहा था कि यदि मैं चाहूं कि वे मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुम्हें इससे क्या लेना देना। ये वही शिष्य है जो इन बातों की गवाही देता है। उसी ने इन बातों को लिखा है। हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती वे दुनिया में ना समाती।